ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। 2062-63 के बाद सार्वजनिक पद संभालने वाले प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों और उच्च अधिकारियों की संपत्ति जांच के लिए आयोग गठन करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा समानुपातिक सांसदों के साथ राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा। राष्ट्रीय आर्थिक गणना के तहत स्थलगत आंकड़ा संकलन शुरू। सत्य और विश्वसनीय विवरण उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय की अपील। और अगले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर वार्ता शुरू होने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संपत्ति जांच के लिए आयोग गठन करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने 2062-63 से 2082-83 तक सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों तथा उच्च पदस्थ कर्मचारियों की संपत्ति विवरण के संकलन और जांच के लिए सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय आयोग गठन करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने जेएनजी आंदोलन की घटनाओं की जांच के लिए गठित कार्की आयोग द्वारा सुरक्षा संयंत्र के संबंध में की गई सिफारिशों का अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश प्रेम राज कार्की के संयोजकत्व में समिति गठन करने का निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता तथा शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। बैठक ने इसके अलावा लापता व्यक्तियों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के लिए स्विस सरकार से प्राप्त होने वाली 1 मिलियन स्विस फ्रैंक की अनुदान सहायता स्वीकार करने, संगठन तथा प्रबंधन सर्वेक्षण संबंधी राष्ट्रीय मापदंड 2082 को स्वीकृति देने तथा आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व तीसरा संशोधन नियमावली 2082 को मंजूरी देने सहित अन्य निर्णय भी किए। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरेल ने दी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले समानुपातिक सांसदों के साथ राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं तथा राजनीतिक महत्व के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के विषय में चर्चा की है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक में समानुपातिक सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र और समुदाय की समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में प्रधानमंत्री शाह के समक्ष अपने विचार रखे। सांसदों के अनुसार बैठक में अपने क्षेत्र के विकास को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यनीतियों, कार्यक्रमों तथा अवरुद्ध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के विषय में चर्चा हुई। बैठक में सांसदों ने शैक्षिक संस्थानों में नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण सहित समसामयिक विषय पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण कराया। इस चर्चा में संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों के समानुपातिक सांसदों की सहभागिता थी। अर्थतंत्र मापन के लिए आर्थिक गणना के मुख्य नारे के साथ आज से देश भर राष्ट्रीय आर्थिक गणना के तहत स्थलगत आंकड़ा संकलन कार्य शुरू हुआ है। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय ने आज राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 के स्थलगत कार्य का शुभारंभ करते हुए बताया कि देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों की स्थिति को समझने तथा विकास योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक विवरण जुटाने के लिए ये गणना शुरू की गई है। इस गणना का मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों की संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगार उत्पादन और सेवा प्रवाह से संबंधित विवरण संकलन करना है। गणना के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारित करने के उद्देश्य से समग्र आर्थिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार 21 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 18 क्षेत्रों के आधारभूत विवरण संकलित किए जाएंगे। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के अनुसार ये कार्य 2083 आषाढ़ मसांत तक संचालित होगा। इसके लिए देश के 77 जिलों में 84 जिलों में आर्थिक गणना कार्य स्थापित कर आंकड़ा संकलन शुरू किया गया है। गणना कार्य में 4,433 प्रतीक्षित गणक और पर्यवेक्षक आगामी आषाढ़ 7 गते तक विभिन्न प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक स्थलों पर जाकर आंकड़ा संकलन में जुटेंगे। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि आरोग्य अभियान से विश्व में बढ़ते द्वंद्व, जलवायु संकट और मानसिक तनाव को कम कर मानवता की भावना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य दिवस के अवसर पर आज सैनिक मंच टूरी खेल में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख अर्याल ने कहा कि आरोग्य केवल रोग न होने की स्थिति नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन की समग्र अवस्था है, इसलिए इसे वैश्विक प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नेपाल के हिमालय सांस्कृतिक विविधता, आध्यात्मिक परंपरा और प्राकृतिक संपदा का उचित प्रचार प्रसार कर नेपाल को आरोग्य पर्यटन का प्रमुख गंतव्य बनाया जा सकता है, इसलिए अब संख्या के बजाय गुणवत्तापूर्ण पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौडेल ने आरोग्य को जीवन शैली से जोड़ते हुए कहा कि नेपाल विश्व को नया मार्गदर्शन दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य दिवस मनाया गया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# हेस्ट डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत विषयगत समितियों के सभापति का निर्वाचन परसों किया जाएगा। परसों शुक्रवार दोपहर 1 बजे संबंधित समिति की बैठक में प्रस्तावक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, समर्थक उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उसके बाद प्रस्ताव को निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये जानकारी प्रतिनिधि सभा के सचिव हर्क राज राय ने दी। संघीय संसद के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा की 10, राष्ट्रीय सभा की 4 और 2 संयुक्त समितियां हैं। आज से देश के 753 स्थानीय तहों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग के अनुसार अनुरोध पर नागरिक स्तर पर व्यक्तिगत घटना दर्ता संबंधी जन चेतना बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम देश भर संचालित किया जा रहा है। सेवा प्रवाह को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने नया आचार संहिता लागू किया है। मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत सभी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी काम कर्मचारी के डेस्क या सिस्टम में आने के बाद उसी दिन और यदि उस दिन संभव न हो तो अगले दिन अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। नई नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित कर्मचारी को तुरंत अपने पर्यवेक्षक को इसकी जानकारी देनी होगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने स्रोतों के उपयोग में मितव्ययिता अपनाने के लिए मातहत निकायों को निर्देश भी जारी किया है। नेपाली कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का को 7 दिन का स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय किया है। पार्टी के लेटर पैड का उपयोग कर अपने पास न होने वाली जिम्मेदारी का प्रयोग करते हुए नेता खड़का ने गत 33 गते विधान के विपरीत कार्य किया। इस आधार पर उन्हें स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय किया गया है। इसी तरह अनुशासन समिति ने गत फागुन 21 गते संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के दौरान पार्टी विधान के विपरीत अनुशासन उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अवधि बढ़ाकर इसे वैशाख महीने के अंत तक करने का निर्णय भी किया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने लुम्बिनी प्रदेश के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के तत्कालीन सचिव वैकुंठ अधिकारी सहित 16 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया है। आयोग के अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 में रूपंदेही के समरी माई गांवपालिका वार्ड नंबर 4 सिद्धनाथ स्थित शीत भंडार निर्माण योजना में प्रचलित कानून के विपरीत समझौता कर कार्य पूरा किए बिना ही भुगतान लेने का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन सचिव अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ग्यावाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम जाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी और व्यवस्थापक समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है। आयोग ने उन पर भ्रष्टाचार निवारण आइन के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए 71,97,000 रूपये से अधिक की वीगो राशि कायम कर उसे वसूल करने तथा कैद और जुर्माने की सजा की मांग करते हुए मामला दायर किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित बातचीत को लेकर कहा है कि अगले दो दिनों में इस्लामाबाद में कुछ हो सकता है। ये बयान IRNA के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। सूत्र के अनुसार इस्लामाबाद में पहले हुई अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी मध्यस्थता की कोशिश जारी रखे हुए हैं। ट्रंप के ताजा बयान पर ईरान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का युद्ध विराम घोषित किया गया था जो 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 2062-63 के बाद सार्वजनिक पद संभालने वाले प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों और उच्च अधिकारियों की संपत्ति जांच के लिए आयोग गठन करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा समानुपातिक सांसदों के साथ राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय आर्थिक गणना के तहत स्थलगत आंकड़ा संकलन शुरू। सत्य और विश्वसनीय विवरण उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय की अपील। और अगले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर वार्ता शुरू होने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।